वाह 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 वाह, आदमी जब देखता है तो कितना महसूस होता है, कितना प्यारा है ये घर, कितना खूबसूरत है ये घर। जनाब, इस घर की फिजा बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, लगता है यहां बहुत अच्छे लोग रहा करते थे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जब इस शहर में आया तो मुझे इस वाकये के बारे में पता चला, मगर मुदाखलत करने का इरादा नहीं था।
इस केस का अंजाम तो मालूम है, सालसी करने की जरूरत नहीं है।
आप सही फरमा रही हैं, कानूनी लिहाज से भी आपका हक है, मगर हाजी शहीदी साहब से आपकी शिकायत की वजह से लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, खासकर मोहम्मद हुसैन के वाकये के बाद।
ये सब मुझे पता है और इस वजह से नाराज हूँ कि कुछ लोग इससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
अच्छा, आपको जब इस बारे में इल्म है तो आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? आप लीजिए ना।
शुक्रिया। देखिए, मैं शहीदी साहब की सबसे ज्यादा एहसानमंद हूँ, मगर मायदा और मोहम्मद हुसैन का क्या होगा?
इस मसले के हल के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा इंशाल्लाह। आप अपनी नीयत साफ रखें, खुदा भी मदद करेगा।
मेरी नीयत जितनी भी साफ हो, शहीदी साहब की नीयत से ज्यादा साफ तो नहीं। इन्होंने अपना घर बेचा, बेघर हो गए और कोई फायदा भी नहीं हुआ। इस मसले का वाहिद हल गुलशन आबाद के बागात और मदरसे का बेचना।
बेहतर था तुम पहले शहीदी साहब से बात कर लेती, आपस में सुलह कर लेते, बजाय इसके कि मसला अदालत में चला जाए।
दाऊद साहब, आप दूसरों से बेहतर जानते हैं कि मैं कितनी दफा आई गई, पैगाम पर पैगाम दिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
आप नाराज ना हो हाजी साहब, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
जब बेगम अंसारी नहीं मान रही हैं तो भला कैसे ठीक होगा?
मेरे पास एक राह हल है जो शहीदी साहब को बताना चाहता हूँ, अगर आप साथ दें तो इसका ज्यादा असर होगा, वो भी इस राह हल को मान जाएंगे।
क्या राह हल हो सकता है?
आप तशरीफ ले चलें, गुलशनाबाद के रास्ते में आपको बताता हूँ। इसको लेने कोहे काफ चले गए थे।
सलाम हाजी साहब, माफ कीजिएगा, तिजोरी खराब थी, बहुत मुश्किल से खुली।
तो अब तिजोरी भी हमारे साथ नहीं दे रही है।
क्या हुआ जनाब?
तुम्हें पता है मुख्तसर रास्ता क्या होता है?
हाँ, यानी छोटा।
यानी जब जल्दी पहुंचना चाहते हो तो मुख्तसर रास्ता अपनाते हो, अगर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो उसी असली रास्ते से जाते हो, लेकिन अगर जल्दी पहुंचना चाहो तो शॉर्टकट लेते हो। अगर रास्ता कच्चा हो और तुम्हारी गाड़ी भी खराब हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करते, इसलिए कि तुम जानते हो कि ज्यादा मुनाफा मिलेगा।
क्या मतलब हाजी साहब?
मतलब ये कि बाज औकात बड़े फायदे के लिए आदमी नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। हाजी साहब,
दाऊ साहब,
माफ कीजिएगा हाजी साहब, मैं आपके खदमत में अर्ज कर रहा था कि मैं आपसे प्राइवेट तौर पर बात करना चाहता था कि आपके साथ सुल्तानाबाद के पीछे वाले मुसाफिर खाने के बारे में बात करूं कि आजकल वो ताजिरों का गोदाम बना हुआ है, मगर मैंने सबको इस बात पर राजी कर लिया है कि इसको मदरसे के लिए वक्फ कर दें, और तय पाया कि एक अकाउंट भी खोला जाए ताकि मुखैर लोग और ताजिर मदरसे के खर्च के लिए हर महीने कुछ रकम इसमें जमा करें। मैं चाहता हूँ कि यह मसला हल हो जाए, लेकिन जो वाकयात पेश आए हैं उनकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हुई है और लोगों का दीन और ईमान भी। मुझे आसपास साफ नजर आ रहा है कि बाज अफराद का ईमान और दीन सुस्त हो गया है और वो बेतवज्जो हो गए हैं। मैं नहीं जानता बाज लोगों ने कैसा रवैया अपनाया हुआ है। अच्छा, फर्ज करें एक आदमी से गलती हो गई है, या शायद किसी दीनदार शख्स के किसी रिश्तेदार ने गलती की है, तो इसका इस्लाम से क्या वास्ता? मैंने मदरसे के इब्तदाई नक्शे बनाने का काम एक बंदे को सौंपा था, आप देख लीजिए, लोकेशन के लिहाज से तो कोई कमी नहीं और इसकी पोजीशन भी बड़ी अच्छी है, 300 मीटर के फासले पर एक मस्जिद भी है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में मदरसे के साथ लग जाएगी।
दाऊद साहब
जी,
क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ?
हुक्म कीजिए।
देखिए, गुलशनाबाद के सारे बागात और इस मदरसे की जमीन मैंने खुद वक्फ की थी, सारा सरमाया भी खुद हाजी हबीब ने मुझे सौंपा है। मैं हाजी हबीब के अहले शरीयत होने पर ईमान रखता हूँ। बेगम साहिबा ने भी जब तक वो जिंदा थीं इन बागात और इस मदरसे के बारे में कोई दावा नहीं किया, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि इस मसले को आप भूल जाएं।
लेकिन मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि ये मसला बखैर और खूबी खत्म हो जाए। हाजी साहब,
बाज लोग हक का दिफा करते हैं, तरफदारी करते हैं, रास्ते पे आते हैं, हत्ता राह चलने लगते हैं, मगर जब देखते हैं कि रास्ता तंग हो गया है तो पीछे हटते हैं। उनकी तरह जो करबला तक भी गए मगर आधे रास्ते में ही साथ छोड़कर चले गए।
ये मोहतरमा हुदा का पेपर तो।
दाऊद साहब, अगर आपकी नीयत नेकी से हल होने में है तो खुदा आपको अजर देगा, मगर ये जान लें कि इस मसले का हल जमीनों और मदरसे का देना नहीं है। कम से कम मैं तो ऐसा मशवरा हरगिज कबूल नहीं करूंगा।
जैसा आप मुनासिब समझें।
कर्ज खाहों के साथ मीटिंग का क्या हुआ?
कल सुबह मुलाकात का कहा है हाजी साहब।
अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझसे कोई और काम तो नहीं?
क्या हुआ बरात अली साहब?
मौलाना साहब, इन वेबसाइट्स ने मौलाना शहीदी साहब के बारे में फिर बुरा भला लिखा है।
अब क्या हुआ?
लिखा है कि मौलाना शहीदी साहब के बेटे ने कालीन स्मगल किए हैं।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
मौलाना साहब, हमें इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना गुनहगार होंगे। सलाम।
जब तक हाजी साहब खुद कोई रद्द अमल नहीं दिखाते हम कर ही क्या सकते हैं।
लेकिन ऐसे में हमारा फर्ज क्या बनता है?
हमें देखना होगा कि इस बारे में हाजी साहब क्या फरमाते हैं। वैसे मरकज का क्या हाल है? सब कुछ ठीक है ना?
जी हाँ, ठीक है मौलाना साहब।
मगर परसों जब मैं आपकी क्लास के सामने से गुजर रहा था तो 2-3 अफराद से ज्यादा नहीं थे। कोई मसला है
जी? नहीं, अभी आगाज है मौलाना साहब। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएंगे।
भाई देखिए, जवानों को रागिब करने के लिए नए नए प्लान बनाएं। मसलन फुटबॉल के मुकाबले शुरू कराएं, बच्चों की फुटबॉल की टीम बनाएं ताकि मैच की वजह से वो खुद ही मस्जिद को अपना मरकज बना लेंगे और आपकी क्लास में भी शिरकत करेंगे।
ठीक है मौलाना साहब, प्लानिंग करता हूँ।
देखिए बच्चों को बिला वास्ता तबलीग अच्छी नहीं लगती।
इंशाअल्लाह अदालत की कार्रवाई के बाद मैं मशहद जाऊंगा।
खैरियत से जाएं इंशाअल्लाह हाजी साहब, हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा।
आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा आप मदरसे के उमूर का ख्याल रखें। जो वाकयात पेश आए हैं मुमकिन है कि बहस और लड़ाई की सूरत अख्तियार कर ले। मैं नहीं चाहता कि तुल्लाब हजरात इस मसले में पड़ें।
ठीक है हाजी साहब, आप बेफिक्र रहें। माफ़ कीजिएगा हाजी साहब, मैं आपके काम में दखल देने की सलाहियत तो नहीं रखता, मगर ये मसला मुश्किलात खड़ी कर रहा है। आपके अहबाब इस बारे में हसास हो गए हैं।
खुदा उनका भला करे कि उल्मा की शान और हैसियत के सिलसिले में अभी तक वो हसास हैं।
जी खुदा उनका भला करे हाजी साहब, मगर आप भी रूहानियत का सरमाया हैं। मेरे ख्याल में जनाब मीरजाई साहब की तजवीज़ को मान लें ताकि ये आग थोड़ी ठंडी हो जाए।
हाजी महदवी साहब, आपके ख्याल में क्या मैं हक और बातिल को नहीं पहचानता?
हाजी साहब, बंदे ने ऐसी गुस्ताखी नहीं की, मैं सिर्फ फिक्रमंद हूँ।
मैं भी फिक्रमंद हूँ। मोहम्मद हुसैन के कर्ज ना चुकाने की मुझे फिक्र है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरे बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं आगे देखता हूँ और सही रास्ते पर चलता हूँ। कल कर्ज खाहों के उधार का कुछ हिस्सा दे दूँगा और उनसे कुछ मोहलत मांग लूंगा। बेगम अंसारी भी मंतकी इंसान हैं। मेरा ख्याल है कि कर्ज खाहों की निस्बी रिजायत देखकर वो भी अपनी शिकायत वापस ले लेंगी।
अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा?
जितना मैं उनको जानता हूँ वो जरूर ऐसा करेंगी अगर कोई नया मसला पेश ना आए तो।
खैर है इंशाल्लाह।
हाँ बिल्कुल, इसमें जरूर कोई खैर है। आपसे जो रिपोर्ट मांगी थी मेहरबानी करके जो कुछ जानते हैं लिख लीजिए और दर्ज कीजिए कि मैं मोहम्मद हुसैन के कामों की तायीद नहीं करता, मैंने किसी से उसकी सिफारिश नहीं की और हत्ता जो लोन वो लेना चाहता था उसमें भी उसका जामिन नहीं बना।
ठीक है।
एक बात और भी थी, हाँ, आपकी रिहाइश के बारे में जनाब दखानी से बात कर ली है और हमने फैसला किया है कि अगर आप चाहें तो जब तक तबलीग और तकरीरों के लिए आप यहाँ हैं आप अपने कमरे में रह सकते हैं। नजमा बेगम, ذرا مرتضیٰ کی تصویر بھی مہربانی کر کے صاف کر دیں۔
صاف کر لیا حاجی صاحب۔
نہیں، فریم کے پچھلے حصے پہ گرد جمی ہے، میں نے دیکھا ہے۔
حاجی صاحب، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس تاخچے پہ گرد پڑی ہو؟
آپ ذرا ایک بار دیکھ لیجئے۔
خدا کی پناہ، آج کل آپ کی عادتیں عجیب ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمر کے بڑھتے بڑھتے ہمارے کاموں پہ بھی شک کرنے لگ گئے ہیں حاجی صاحب۔ لیجئے، صاف کر دیتی ہوں۔ ارے یہ کیا ہے؟
آپ کے لیے ہے یہ۔
بہت بہت شکریہ، میں بھول گئی تھی کہ آپ کی پسند اتنی اچھی ہے۔ یہ ہے کس خوشی میں؟
لگتا ہے کہ ایک رکعت گننے والی سجدگاہ بھی مجھے آپ کے لیے لے لینی چاہیے تھی۔
آپ کو نہیں لگتا کہ اس سلسلے میں آپ آگے ہیں؟
اگر آپ کو رکعت شمار کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کو یاد ہوتا کہ آج سال کا وہ دن ہے کہ آپ میرے جھنجھٹ میں پڑ گئیں۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔
بے پائے خیشتن آیند عاشقان بکمندت، کی ہر کی رات تو بے گیری زے خیشتن بے ریحانی۔
میں خوش ہوں، جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کی وجہ سے بہت عرصہ ہوا آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے مٹھائی لی اور سوچا بچوں کو بلا لیں، سب اکٹھے کھا لیں گے۔
محمد حسین آج گھر نہیں آئے گا، مائدہ سے کہا ہے کہ مرادی کو ڈھونڈنے جائے گا۔
امید ہے کہ اس لڑکے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
کاش مرتضیٰ ہوتا۔
نجمہ بیگم، جو تحفہ آپ نے دے دیا ہے اس کا افسوس نہ کریں۔
محمد حسین اکیلا ہے، اگر اس کا بھائی ہوتا تو شاید ان مشکلات میں نہیں پڑتا، اس کا خیال رکھتا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حاجی عبدالحسین، جو آپ نے کہا مجھے کبھی اس کا افسوس نہیں ہوا۔ اتنے سال ہوئے وہ ہم سے بچھڑا ہے، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے وہ ایک دن لوٹ آئے گا۔ میرا دل اس لیے دکھتا ہے کہ حاجی عبدالحسین، جب بھی میں روتی ہوں اور اس کی بلائیں لیتی ہوں تو وہ میری آواز نہیں سنتا۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ ایک دن لوٹ آئے گا۔ کبھی لگتا ہے دروازے کی گھنٹی بج رہی ہے، میں کہتی ہوں کون ہے؟ کہتا ہے میں ہوں ماں، آپ کا بیٹا مرتضیٰ۔ دروازہ کھولے انتظار کرنا بہت سخت ہے۔
صبر سے کام لیجئے، جیسی خدا کی مرضی۔ نجمہ بیگم، مہربانی کر کے دو پلیٹیں لے آئیں۔ ایک پلیٹ مٹھائی حاجی مہدوی صاحب کے لیے لے جائیں اور ایک پلیٹ مائدہ کے لیے۔ البتہ اسے یہاں آنے کو نہ کہیں، شاید وہ اکیلے رہنا چاہتی ہو اور تکلف میں پڑ جائے۔
اچھا، لاتی ہوں۔ سمیہ بیٹی، ایک منٹ کے لیے آ جاؤ ذرا۔
جی حاضرہ صاحبہ۔ آئیے حاضرہ صاحبہ، آئیے، تشریف لائیے۔
تمہارے لیے مٹھائی
لائی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی مہربانی۔
میری پیاری بیٹی زاہرہ کیا کر رہی ہے؟
پینٹنگ بنانے میں مصروف ہے۔
شاباش۔
آئیے آئیے، بیٹھیے حاضرہ صاحبہ۔
جانتی تھی تعلیم یافتہ ہو، مگر نہیں جانتی تھی کہ اتنی مصروف ہو۔
نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔
یہ سب تمہاری تحریر میں ہے؟
جی ہاں، کچھ چیزیں لکھ لیتی ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں۔
اچھا، تو یہ کیا ہے؟
دراصل زہرہ کی پیدائش سے پہلے میں اور رحیم اولاد کی تربیت کے بارے میں بازار میں کتابیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں اور ہماری ثقافت کے ساتھ زیادہ نہیں ملتی۔
बिल्कुल ठीक। अलबत्ता हमारे पास औलाद की तरबियत के बारे में बहुत ज्यादा अहदीस और रिवायात मौजूद हैं बेटी।
जी बिल्कुल, मैंने भी उसके बाद उन्हीं हदीसों और रिवायतों को जमा करना शुरू किया। पहले सिर्फ अपने लिए लिखती थी, अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता एक मजमुआ बन गया।
बहुत अच्छा किया, शुक्रिया बेटी। अब मैं तुम्हारा और वक्त नहीं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाजिया साहिबा।
अरे हाँ, याद आया
जी,
मेहरबानी करके मेरा एक काम कर दो, ये मिठाई मायदा के लिए ले जाओ, कुछ मुद्दत से डिप्रेस है। मैं अगर जाके बात करूंगी तो बहरहाल वो नसीहत समझेगी। तुम हम उम्र हो, बात करोगी तो उसका दिल बहल जाएगा।
जी मैं जरूर लेकर जाऊंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया।
जरूर।
और हाँ, ध्यान रखना कि उसे ना पता चले कि मैंने तुम्हें भेजा है।
जी बिल्कुल ठीक, मैं ख्याल
रखूंगी।
ठीक,
शुक्रिया।
सलाम मायदा बहन।
सलाम।
तुम कैसी हो? ठीक हो?
बहुत शुक्रिया।
मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ।
ये किस खुशी में है?
कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ?
नहीं, बहुत मेहरबानी।
मोहम्मद हुसैन साहब अभी नहीं आए ना?
वो अपने कामों में मसरूफ है।
अच्छा तो मैं चलती हूँ।
माफ कीजिएगा सुमैया साहिबा, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।
सलामत रहिए। खुदा हाफिज।
मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी माजरत खाही उन लोगों को भी पहुँचाएंगे कि जिनको आपकी तरह नुकसान पहुँचा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं अबू जान। अबू जान, अगर आप चाहें तो मैं खुद वहाँ जाकर उनसे बात करती हूँ।
नहीं बेटी, आरिश है वहाँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुमको भी बुला लूँगा।
जी अच्छा।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
आप जाइए, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी।
लीजिए लीजिए लीजिए, बैठिए बैठिए। लो आरिश बेटा,
ये हमारे ख़ानदान का सारा सरमाया है। इस घर और इन मवेशियों को बेचने से जो कुछ हासिल हुआ है, जो हमारा ज़रियाए माश था, और ये रकम भी जनाब मीरज़ाई ने अपनी तरफ से दी है।
हाजी साहब, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ये पैसे आबनुमा कंपनी के कर्जे का 2/3 भी नहीं है।
मुझे मालूम है, मगर जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये हमारे घराने का पूरा सरमाया है। ये आदमी भी यहाँ कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर बैठा है कि अगर हो सके तो आप लोग आपस में यहाँ समझौता करें।
समझौता किस लिए हाजी साहब? माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी मेहनत की कमाई नहीं बख्श सकता हूँ।
नादरी साहब, किसी ने आपको अपना हक माफ़ करने के लिए नहीं कहा है। हाजी साहब का मतलब यह है कि आप अपने बाकी के पैसे किस्तों में ले लें।
किस्तों में ले लें, यानी अपने पैसों के पीछे भागें।
खैरुल उमूर औसतोहा, किस्तों की तादाद इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि ये लोग दे भी ना सकें, और ना इतनी ज्यादा हो कि वो आपके काम ना आ सके। ये लोग 6 महीने में सारे पैसे अदा कर देंगे।
हाजी साहब, माजरत के साथ, आपके बेटे तशरीफ नहीं लाए, कंपनी का ज्यादातर काम तो वही करते थे।
वो यहाँ नहीं है इसलिए कि उस आदमी के पीछे गया है जो दर हकीकत एक तरह से इन तमाम मसाइल का सबब है।
मुरादी साहब,
माजरत के साथ हाजी साहब, हम जब मोहम्मद हुसैन साहब से अपने पूरे पैसे ले सकते हैं तो क्यों किस्तों के पीछे भागते रहे?
माफ कीजिएगा मासूमी साहब, क्या मोहम्मद हुसैन के पास पैसे हैं और वो दे नहीं रहे? यानी आप हाजी साहब पे एतबार नहीं करते?
जाहिर है कि है, लेकिन बस मोहम्मद हुसैन खान पर भरोसा नहीं है।
ये बच्चे ना चाहते हुए इस मुश्किल में फंस गए हैं। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कहना चाहता कि ये कसूरवार नहीं है, मगर गफलत में पड़ गए और इन्होंने लापरवाही।
माजरत के साथ हाजी साहब, अगर कोई गफलत और सुस्ती का शिकार हो जाए तो लोगों के पैसों से कालीन नहीं खरीदता।
कालीने? ये बात आपको कहां से पता चली?
वेबसाइट पर हाजी साहब, पुलिस ने भी तहकीक की है और हमने भी जिस जिस से पूछा है कहता है सच है।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
घंटी मत बजाओ। वाह वाह, बहुत मुबारक हो, आखिर तुम्हारा हिस्सा दे दिया ना भाई ने।
जलो नहीं,
अपना ख्याल रखना कहीं इधर उधर जाते हुए एक्सीडेंट ना हो जाए।
जिस वक्त तुम मिट्टी में खेलते थे मैं ड्राइविंग करता था।
जो भी हो एक ही दफा माले हराम की सजा पाओगे।
तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि ये हाजी साहब ने दिलाई है।
तुमने अपनी चापलूसी का सिला ले लिया, यही काम जारी रखो, घर भी मिल जाएगा।
ये सूरज किस तरफ से निकल आया कि तुम रोटी ले आए?
ये बाबा का लाडला लाया है, बाबा की तरफ से दिलाई गई गाड़ी का एहसान चुकाने।
क्या तुमने अपने मुलाजिम के लिए गाड़ी खरीदी है?
उसको 5 साल की मजदूरी एक साथ दे दी है।
तो क्या उसको हर महीने तनख्वाह नहीं देते हो?
घर के लिए जो काम करता है वो हिसाब नहीं कर रही हो? हमारी खुशी गम में कम मेहनत की है उसने, एक दिन भी बगैर गर्म रोटी के नाश्ता किया है?
हर रोज की रोटी खरीदने का कितना हिसाब लगाया है जो उसकी मजदूरी एक गाड़ी बन गई?
तुम भी अगर हिम्मत करते और मेरे तहत काम करते तो उससे ज्यादा तुम्हें नसीब होता।
मैं अगर पूरे मोहल्ले के लिए भी रोटी लाऊं आपको नजर नहीं आएगा। कुछ भी हो मजीद की फैमिली बेहतर है। शायद मैं आपका बेटा नहीं हूं मगर मुझे नहीं पता।
आरश बकवास मत करो।
बकवास नहीं है अम्मी, उसका वो बेगैरत भाई हमारे पैसे खा गया है। मेरा बाप बजाय इसके कि लात मारकर उसे निकाल बाहर करे उसकी मदद कर रहा है और गाड़ी दिलवा रहा है।
मजीद अपने भाई जैसा नहीं है।
क्या फर्क पड़ता है, दोनों का प्लान एक ही तो है।
अपनी गलतियों के लिए दूसरों को क्यों कसूरवार ठहराते हो? अपनी ताकत से ज्यादा वजन उठाने का नतीजा तो यही निकलना था।
हम तो अपना काम कर रहे थे, आपने देखा कि हमारे प्रोजेक्ट से सब जल रहे थे, आपके मुरादी साहब ने हमें तबाह कर दिया।
तुम लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए थी, कारोबार बच्चों का खेल तो नहीं है ना।
मुरादी को आपने हमारे साथ मुतारिफ कराया, आपने उसे बड़ा बनाया। अगर इंसान अपनों से धोखा खाए तो बहुत दुख होता है।
बस भी करो अब।
जरा ठहरो तो, कहना चाहते हो कि मैंने तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया?
आपकी इजाजत के बगैर मुरादी पानी नहीं पीता था, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि उसने हमें धोखा दिया है?
ये क्या किया तुमने दाऊद?
सुना नहीं तुमने वो क्या बकवास कर रहा था?
तुम उसके बाप हो, बर्दाश्त करना चाहिए था तुम्हें। वो तो गुस्से में था, ऐसे ही बोल गया।
मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं मुरादी से मिला हुआ हूँ।
जब तुम अपने मुलाजिम को अपने बेटे से ज्यादा तवज्जो देते हो तो ऐसी तवक्को भी रखनी चाहिए।
जोहरा, मैंने उसके लिए क्या कोई कमी छोड़ी है?
अगर मजीद अच्छा लड़का है तो आरश तुम्हारा अपना खून है, उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए तुम्हें।
माफ कीजिएगा जनाब।
जी
आप उस जवान को जो हाजी साहब के पास गया है पहचानते हैं?
क्यों,
एक घंटे से अंदर गया है, एक मसला पूछने में इतना वक्त तो नहीं लगता?
आपको हाजी साहब से क्या काम है?
अगर आपको बताना होता तो इतने इंतजार की जहमत नहीं उठाता।
क्या तुमने वो लतीफा सुना है कि एक आदमी से पूछते हैं कि तुम नशे के आदी कैसे हो गए?
कहता है बुरा दोस्त और अच्छा नशा।
अगर इस लतीफे के पस मंजर में देखा जाए तो नजर आता है कि नशे के सारे आदी अफराद एक लिहाज से एक जैसे होते हैं।
सारे नशा करते हैं?
जी हाँ, जो नशा करता है वो अपने अलावा सबको कसूरवार समझता है। ज्यादातर आदी अफराद खुद पर एतमाद के फुकदान का शिकार होते हैं। ये लोग अपने बारे में अच्छी हिस नहीं रखते और दूसरों को अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार समझते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि अपने नशे को जारी रखना चाहते हैं, और तुम भी इस कायदे से मुस्तस्ना नहीं।
मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाया और सब सच सच बताया है।
हाँ ये तो है, मगर बकौल शख्स ऐसे जाविये से बयान किया कि तुम्हारे सिवा सबका कसूर और गलती जाहिर हो। तुम्हारे वालिद, तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम्हारे क्लास फेलो का बाप जिसने अपनी बेटी के साथ तुम्हें शादी नहीं करने दी, यानी ये सब कसूरवार हैं। सिर्फ तुम ही कुर्बानी का बकरा बने हो।
तो क्या आप नहीं मानते कि आदमी मुआशरे की वजह से बिगड़ता है?
मुआशरा भी तो हमसे और तुमसे ही बनता है।
जिस दिन मैंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया हत्ता सिगरेट तक नहीं पीता था, मगर सिर्फ 2 साल में नशे का आदी हो गया। मुआशरा ही मेरे बिगाड़ की वजह है।
पैगंबर अकरम फरमाते हैं, अपने आप और दूसरों को नुकसान पहुंचाना मना है। क्या बेहतर नहीं होगा कि हमेशा गलत सोचने के बजाय कोई राह हल तलाश करो? मेरे भाई अपनी जान क्यों नहीं छुड़ाते?
चाहता हूँ। मैंने 2-3 मरतबा खुद को तहखाने में बंद कर लिया, लेकिन दोबारा नशे की तरफ लौटाया।
नशे की असल वजह तलाश करो, वरना 100 बार भी खुद को तहखाने में बंद करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा किस्सा उस आदमी की तरह है जिसने पानी से भरा स्विमिंग पूल देखा तो कहा, वाह कारीगर ने इसमें मार्बल कैसे लगाया होगा। मेरे भाई, अगर उसमें मार्बल लगाना चाहते हो तो पहले उसे पानी से खाली करो। कल इसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा।
ठीक है, जरूर।
मेरी बातों के बारे में खूब सोचो, अलबत्ता नशे के वक्त नहीं।
फिक्र ना करें, कल तक खुद को कंट्रोल में रख सकता हूँ।
पक्का वादा?
जरूर।
भाई मजीद?
जी हाजी साहब।
भाई ये मेरे अच्छे और प्यारे दोस्त हैं, कल तक मैं इनको आपके हवाले करता हूँ।
शुक्रिया हाजी साहब।
जय
मेहरबानी।
हाजी साहब कबूल हो?
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम हाजी साहब। हाजी साहब आपको एक जहमत देनी थी।
जी फरमाइए।
मंगल की सुबह हमने अपने दफ्तर में ज़ियारत आशूरा का प्रोग्राम रखा है। हम चाहते थे कि आप तशरीफ लाएं ताकि हम सब फायदा उठा सकें।
मंगल को तो आना मेरा मुश्किल है, इसलिए कि हर मंगल को हाजी शहीदी साहब के दरस अखलाक का लेक्चर होता है जिसमें मेरा होना भी बहुत जरूरी
साहब,
है।
साहब हमने अपने सारे साथियों को बता दिया है कि आप आएंगे। अगर आप इजाजत दें तो एक मस्जिद की दीवार पर लगा दूं। इजाजत है?
आपने बगैर मुझसे पूछे ऐसा क्यों किया मेरे भाई? आपको पहले मुझसे मशवरा कर लेना चाहिए था।
ये हमारे ताल्लुकात आम्मा के एक आदमी की गफलत थी। अब आप मेहरबानी करके प्रोग्राम बनाए कि इसमें शरीक हो सकें।
चलिए देखता हूं क्या होता है।
बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी।
खुदा आपको अपने अमान में रखे।
सलाम।
डरो मत, दीवार फलांग के अंदर नहीं गई, तुम्हारी माँ ने दरवाजा खोला था।
आपको मुझसे कुछ काम था?
नहीं, मैं तुम्हारी माँ का हाल पूछने आई थी।
वाकई में आई थी मेरी अम्मी से मिलने के लिए?
मुझसे मोहब्बत की उम्मीद नहीं है क्या?
आपको बुरा न लगे, आजकल सभी मेरे पीछे किसी न किसी बहाने से घूमते रहते हैं।
तुम्हारे भाई के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं।
क्या आप भी इसीलिए आई हैं?
उसकी कोई खैर खबर है?
नहीं।
नहीं जानते?
नहीं।
तुम्हें कैसे पता कि वो ठीक ठाक है?
आपसे किसने ऐसा कहा?
जब तुम अपनी माँ से कहते हो कि वो ठीक है तो तुम्हें उसका पता है ना?
आपको गलत फहमी ना हो, मैंने अपनी माँ की परेशानी खत्म करने की खातिर यूं कहा।
मेरा यहाँ पहले दिन आना तुम्हें याद है?
कैसे?
तुम्हें याद है कैसे मुझे देर करा दी थी ताकि तदफीन के लिए ना पहुंच सकूं? अब भी तुम्हारा रवैया वैसा ही है।
आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया?
क्या हुआ?
जैसा मैंने सोचा था, मजीद की माँ को पता नहीं है।
और खुद मजीद को?
मुझे यकीन है कि वो अपने भाई के साथ रابطے में है। बेहतर है तुम ना आओ, पार्क करो आगे, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें चाहिए कि मजीद को बुलाओ, वो सबसे बेहतर जानता है कि मसला क्या है।
इतना यकीन से कैसे कह सकती हो?
जब इसकी तफ्तीश करोगी तो खुद ही पता चल जाएगा।
मैं ना पुलिस हूँ ना जज, और ना ही किसी को नोटिस भेज सकती हूँ। बेहतर है तुम खुद अपने दामाद को राजी करके पुलिस के पास भेजो।
तुम्हारा काम भी सिर्फ मेरे दामाद पे शक करना है।
इस मसले का जाहिरी पहलू ये है कि मजीद से ज्यादा उस पर शक है।
तुम क्यों नहीं समझ रही? कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, कुसूरवार ठहरा रहे हैं।
अगर वो तुम्हारा दामाद ना होता तब भी ऐसा कहती?
कालीनों के पकड़े जाने की खबर और मोहम्मद हुसैन का वाकया सब वेबसाइट में आ चुका है।
मैं मानती हूँ मसला थोड़ा मशकूक है।
थोड़ा सा मशकूक? बस यही?
उम्मीद मत रखो कि ऐसे मसले की वजह से उसका नाम इस वाकये से बिल्कुल हट जाएगा।
नहीं, मगर कम से कम समझ सकती हूँ कि कौन खराबी कर रहा है।
मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि इस बारे में कर्नल जहांगीरी से बात करूँ।
मैं नहीं जानती, जो कर सकती हो करो। मायदा की जिंदगी तबाह हो रही है।
तुम परेशान ना हो, बेगुनाह तख्तेदार तक जा सकता है मगर फांसी नहीं हो सकती।
हाँ, मगर जिंदगी हमेशा इन मुहावरों की बुनियाद पर नहीं चलती।
सलाम।
अलैकुम सलाम।
कुछ हुआ है के दाऊद साहब?
तुम मोहम्मद हुसैन और मायदा आज ही कलार दश्त चले जाओ, और जब तक मैं हालात ठीक ना करा दूं वहीं रहो, फिर वापस आ जाना। तुम लोग यूं ही बगैर मशवरा किए आगे बढ़ रहे हो। अगर मुझ पे एतमाद नहीं है तो साफ कह दो ताकि मैं अपनी कोशिशें रोक दूं।
नहीं, हमें आप पर भरोसा है, मगर हम जो कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना।
तुम लोग जो कर सकते हो यही कि उस बेचारी बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक कराना चाहते हो ताकि इन उलझे हुए हालात में एक कत्ल का इजाफा हो जाए।
एक बात साफ साफ कह दूं दाऊद साहब।
बोलो।
क्या आपको यकीन है कि आप मुरादी को ढूंढ लेंगे?
इंशाल्लाह।
नहीं, ऐसे नहीं, वाज़े जवाब दें। खुदा को बीच में मत लाएं। आप मुतमईन हैं या नहीं?
हाँ, मैं मुतमईन हूँ।
तो आज ही जाके कंपनी के कर्जे अदा कर दें, सबकी परेशानी दूर करें, फिर जाके मुरादी से अपने पैसे ले लें।
तुमको क्या लगता है कल मैंने कर्ज खाओं को क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि उनको राजी कर लूं, मगर वो किस्तें लेने पर राजी नहीं हुए।
एक साथ उनके पैसे दे दें, फिर जाके कालीने छुड़ा लें और मुरादी से अपने पूरे पैसे ले लें।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो हमें अपना काम करने दें, बकौल आपके हमें अपने रास्ते चलने दें।
मोहम्मद हुसैन, मैं तुम पर एहसान नहीं जताना चाहता, लेकिन सिर्फ ये मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन हालात में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, यहाँ तक के तुम्हारे वालिद। अच्छा, तो मैं इस केस से पीछे हटता हूँ, देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो।
अब हम क्या करें?
ये सब तुम्हारी अहमकाना बुलंद परवाजी की वजह से है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक दिन दाऊद मीरजाई की मोहताज हो जाऊंगी।
हेलो, सलाम कर्नल साहब। अभी नहीं आ सकता, मगर ठीक है, फिर किसी वक्त आता हूँ।
मोहम्मद हुसैन की हालत बहुत खराब है, शहर में लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, जैसा कि सब उसके खून के प्यासे हों।
उसने लोगों का पैसा खाया है, तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो?
मुझे मोहम्मद हुसैन की फिक्र नहीं है, उसको खुद एहतियात बरतनी चाहिए थी कि क्या कर रहा है और क्या नहीं। मुझे अपने और अपने बेटे के ताल्लुकात की फिक्र है, उसने मेरी बात को कभी टाला नहीं था।
तुम क्या नहीं चाहते कि इलाका आबाद हो जाए? इलाके की खुशहाली क्या सबके फायदे में नहीं है? उसके लिए कुछ खोना पड़ता है।
इस खो देने की हद क्या है?
एक अतालवी राइटर है, उसका नाम विल्फर दुपार्टो है, उसकी किताब तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। कहता है लोगों को इत्मीनान की एक निशाने की जरूरत होती है, उनको लगना चाहिए कि उसे हासिल कर सकते हैं मगर वो उनकी पहुंच में नहीं होती। जब तुम एक आदमी की छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हो तो असल में उसकी जिंदगी बर्बाद करते हो, क्योंकि वो बड़ी ख्वाहिशात और उससे बड़ी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। बूम। इस तरह तरक्की करने के लिए सब एक दूसरे को निकलते रहते हैं। मुआशरे को मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, बड़ी आरजू रखने वाले लोगों की, जिनकी बरकत से मामूली लोगों में अपनी छोटी ख्वाहिशात तक पहुंचने की उम्मीद पैदा होती है। ये सरमायाकारी की सबसे बड़ी ईजाद है। मेरी नजर में हकीकी इंसाफ यही है, वो इंसाफ जो मुआशरे को मुतादिल रखता है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम?
हाँ समझ रहा हूं।
तुम खुद अपने बेटे की हालत ठीक कर सकते हो, उसके लिए कुछ खरीद लो, कुछ कर लो उसके लिए।
मुरादी से जमीनें खरीदने की तजवीज तुम्हारी थी या मोहम्मद हुसैन की?
मेरी तजवीज थी।
तुम लोग मुरादी को कैसे जानते थे?
मेरे वालिद के पास आता जाता रहता था।
क्या मोहम्मद हुसैन उसे पहले से जानता था?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इस आबनबा कंपनी में ज्यादातर काम तुम्हारे जिम्मे था या मोहम्मद हुसैन के?
हम दोनों मिलकर काम करते थे, मगर मैनेजमेंट मोहम्मद हुसैन के हाथ में था।
कभी ऐसा भी हुआ था कि जमीनों के कागजात के बारे में इंक्वायरी करना चाहते थे और उसने मुखालेफत की हो?
नहीं, उसे भी मेरी तरह इस मसले का पता नहीं था।
अकाउंट्स के बारे में क्या तुम्हारा उसमें अमल दखल था?
जी हाँ, इसलिए कि हमारे काम मुश्तरक थे।
कभी किसी चीज पर तुमको शक गुजरा था, मसलन बहुत ज्यादा पैसों की मुंतकली बगैर उसकी वजह जाने?
यानी आप कहना चाहते
हैं? तुम मेरे सवाल का जवाब दो।
नहीं।
मोहम्मद हुसैन ने कालीनों के मामले में कभी तुमसे कुछ कहा था?
जनाब, आप मोहम्मद हुसैन पर इतना शक क्यों कर रहे हैं?
तुमको क्या पता कि शायद मुझे तुम पर भी शक हो?
इसलिए कि अब तक जो कुछ पूछा वो मोहम्मद हुसैन के बारे में था, उसका मुरादी से कोई लेना देना नहीं है।
क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि मुरादी ने कालीन पहले क्यों नहीं मुंतकिल किए?
नहीं, मुझे कैसे पता होना चाहिए? शायद कोई खरीदार नहीं मिला होगा।
शायद मोहम्मद हुसैन मुरादी के साथ मिला हुआ था, मगर चाहता था उसे नुकसान पहुंचाए। उसे भी खबर हो गई और मामले को जाहिर।
जनाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी खालाजाद बहन जो अब मोहम्मद हुसैन की बीवी है, आजकल जमानत पे आजाद है। ऐसी हालत में मोहम्मद हुसैन अपनी बीवी से खयानत करेगा?
शायद उसने सोचा हो कि उसके वालिद की हैसियत की वजह से लोग उसकी शिकायत नहीं करेंगे।
आप मोहम्मद हुसैन के बारे में गलती कर रहे हैं। वो हराम और हलाल का ख्याल रखता है।
तुम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो।
वो मेरा भाई है।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको राजी करता कि रजा कराना तौर पर आ जाए और सारी हकीकत बता दे। ये उसके फायदे में है और उसकी सजा कम हो सकती है, वरना 10-12 साल के लिए जेल जाएगा।
हेलो
आरश।
हाँ बाबा।
कहाँ हो?
बाहर हूँ।
मुझे तुमसे काम है, जल्दी आ जाओ।
कहाँ है?
मार्केट में।
ठीक है, मैं अभी आता हूँ। खुदा हाफिज।
क्या है
आरिश, इस मार्केट के बारे में तुम्हारी क्या राय है?
आप उसे खरीदना चाहते हैं?
अगर पैसे आ जाएं तो शायद एक तरफ वाली दुकानें खरीद लूं। मेरे ख्याल में अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
अच्छा फैसला है, मुबारक हो।
सुबह से अब तक नाराज हो ना तुम? तुमने बहुत बदकलामी की और मैं भी गुस्से में था। इस कंपनी के मसले ने हम सबको परेशान कर रखा है।
अगर मुझसे कोई खास काम ना हो तो मैं जाकर अपने काम निपटाऊं?
नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है।
जी
ये लो, एक दुकान तुम्हारे लिए खरीद ली है।
क्या मैंने आपसे दुकान मांगी थी?
क्या तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होना चाहते थे?
अब्बू, आपने मजीद के लिए जो कुछ भी किया उससे मुझे कोई जलन नहीं है।
इस मामले का मजीद से क्या ताल्लुक? तुम मेरे बेटे हो। तुमने ये काम शुरू किया मगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
मुझे दुकान के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं कंपनी के काम को वक्त देना चाहता हूँ। बहुत काम रह गए हैं।
कंपनी तो बस अब खत्म ही हो गई है, डूब गई। मोहम्मद हुसैन अगर अक्लमंद हुआ तो अपनी जमीनें बेचकर उधार चुका देगा।
मैं भी उसका पार्टनर हूँ, उसके नफे और नुकसान में उसका साथ देना होगा।
बेटा, एक वक्त तुम लोगों ने आपस में एक बात कर ली, वादे किए, मगर जरूरी तो नहीं कि पूरी जिंदगी इन्हीं वादों में फंसे रहो।
अगर मैं काम शुरू करता हूँ तो मोहम्मद हुसैन नहीं कहेगा कि दोस्त ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया है?
नहीं कहेगा। मोहम्मद हुसैन होशियार लड़का है, वो जानता है कि तुम दोनों के रास्ते एक दिन अलग होंगे। शायद तुम्हारा कारोबार जम जाए और उसे भी तुम अपने साथ काम पर लगा लो।
अब्बू, मोहम्मद हुसैन फंस चुका है, अगर यही हालत रही तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी।
यह किसने कहा?
जहांगीरी ने कहा, वो हाथ धो के मोहम्मद हुसैन के पीछे पड़ गया है।
100 मरतबा मैंने उस लड़के से कहा कि ये सब काम मुझे हल करने दो, मगर उसने एक ना सुनी और सब काम मेरे हाथ से निकल गया।
अब्बू, ये नहीं हो सकता। मोहम्मद हुसैन हर जगह मेरा हामी था। अब उसका साथ छोड़ना बड़ी बेगैरती है।
तो क्या करना चाहते हो?
नहीं जानता, पर उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
मेरे बेटे, अपने काम में दिलचस्पी लो और अपनी आमदनी से अपने हिस्से का कर्ज चुकाओ। यह बेहतरीन काम है। अक्लमंद आदमी मुस्तकबिल को देखता है, ना कि माजी को। जो कुछ भी दुकान के लिए लेना चाहो मैं दिला दूंगा।
इंजा बरा